नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम गुफ्तगू कर रहे थे न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले। नसीरुल्ला नक्शबंदी साहिब ने नूर टीवी इसे हमें कॉल करके आगा साहब से जो है वो एक सवाल जो है, और उन्होंने एक जो तजवीज़ पेश की कि हम किस तरह पाकिस्तान को एक रोल मॉडल बनाकर मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी जो है उसको रोल मॉडल बनाकर हम यूके में किस तरह शिया सुन्नी मिलकर एक ईद मनाने का इरादा कर सकते हैं। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा सब, और इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं।
हैदर साहब।
सलाम भाई, मैं जाबिर आबदी बात कर रहा हूँ लूटन से।
जी फरमाइएगा जाबिर आबदी।
जाबिर जी
लूटन से बात कर रहे हैं। जाबिर आबदी साहब,
पहचान गए।
सबसे पहले तो मौलाना सैयद अली रज़ावी साहब, मौलाना मोहम्मद हसन मारफी साहब, मौलाना सैयद नियाज हुसैन नकवी साहब, मौलाना मोहम्मद अब्बास रही जहरी साहब और सलमान भाई, आप और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।
और ईद फितर की आप सबको मुबारक।
आपको भी
बात पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद आगा साहब, मेरे बेसिकली तीन सवालात हैं, मैं कंसाइज करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आप इसका जवाब दे दें।
थोड़ा ऊंची बोलें,
थोड़ा सा अगर आप लाउडली थोड़ा सा बोल लें ताकि क्लियर आ सके आवाज।
जी सर, साइंटिफिक कैलकुलेशन और साइंटिफिक एड, ये दोनों में क्या फर्क है? आगा साहब, मिसाल के तौर पे साइंटिफिक एड यूज करके चांद को देखना टेलीस्कोप की मदद से, और दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेशन बेस्ड के हम 4 दिन पहले कह रहे हैं कि इस तारीख को इतने बजे चांद मौजूद होगा या नहीं होगा, ये दोनों पर आगा खामनेई साहब और आगा इस्माइल साहब के क्या फतवे हैं? और दूसरा सवाल आगा साहब के उफुक, यूके का उफुक कितनी दूर है और ये तमाम मुश्तहिदीन के नज़दीक क्या एक ही है? और तीसरा सवाल है आगा साहब के, माशाल्लाह से जिस तरह मजलिस-ए-उलमा शिया यूरोप ने जो 3 साल में काम किया है, सभी इदारों को उनने एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए हैं, माशाल्लाह इसमें बहुत ही मेहनतें हैं, आप उनकी कोशिशें काविशें हैं, अल्लाह आपको इसका इसकी जजाए खैर दे आप सभी को। क्या ये मुमकिन है आगा साहब के सारे दफातर के दफातर पर आप रुजू करें और सभी की मिलकर एक स्टेटमेंट सामने आए रोयत एलान के तौर पर, ताकि ये तमाम शिया जो यूके में मौजूद हैं वो एक ही दिन ईद करें?
ठीक है, तीनों सवाल।
बहुत शुक्रिया आगा, मैंने आपके तीनों सवाल नोट कर लिया, इंशाल्लाह हम आप जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप नसीरुल्ला नक्शबंदी साहिब जो हैं उनके सवाल का जवाब दें।
जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई मौलाना नसीरुल्ला नक्शबंदी साहब ने फ़ोन किया नूर टेलीविज़न की तरफ से और अहले सुन्नत उलमा की जो रोयत हलाल कमेटी है। इत्तफाक़ हुआ हमारा, सबसे पहले मेरे एक दो पहले एक्सपोजर मुझे हुए उनके साथ, अहले सुन्नत बरादरान के साथ, टेलीविज़न के हवाले से भी, जियो टेलीविज़न के ऊपर भी जो हुआ और जगहों पर जो उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में अभी जो आप अहले सुन्नत वलजमात ने सिलसिला शुरू किया है इस पर हम सब का इतफ़ाक़ हो सकता है कि अब तकरीबन हम सब लोग एक ही लाइन पे सोच रहे हैं कि हम अगर साइंटिफिक एविडेंस को रद्द ना करें और बाहर की कैलकुलेशंस को और दूसरों के सच्चे झूठे ऐलानात को ना करें, बल्कि ख़ुद जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ शुरू किया, बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को भी सराहता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर माशाल्लाह इज्तिहाद किया है और बहुत मजबूती से आप सामने आए हैं और हमें इस पर खुशी है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद की भी और इस कामयाबी की। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम लोग भी प्रिपेयर्ड हैं, जितने हैं पाकिस्तानी तकरीबन उलमा भी ज़्यादा हैं, मराकज़ हमारे ज़्यादा हैं, 70 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा वैसे शिया मसाजिद, शायद 150 से भी ज़्यादा इस वक्त मराकज़ हैं हमारे यूके के अंदर, लेकिन 70 से ज़्यादा हमारे, बल्कि जी हाँ, हमारे इस वक्त इमाम बारगाह मसाजिद हैं यूके के अंदर, जहाँ पर ईद वगैरह का सिलसिला है, माह मुहर्रम का है, माह रमज़ान का है, प्रोग्राम होते हैं पूरे 30-30 दिन इफ्तार वगैरह का। हम इस पर इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से हाज़िर हैं, इंशाल्लाह ताला कोऑपरेशन भी हो सकती है और यूके के अंदर बजाय इसके कि हम दूसरों के सामने एक मसखरा बने कि 3-3, 4-4 ईदें यहाँ पे मुसलमानों में होती रही हैं, एक सब तो कभी भी मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन अगर एक अक्सरियत मिलके हम चाहें तो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस और ये ऑब्जर्वेटरी की जितनी रिपोर्ट्स हैं उन सब के अगर उस बेसिस के ऊपर हम लोग ऐलान करें, हम आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे आप लोगों ने शुरू किया, हमने बड़ी मजबूती से इस पर काम खुद भी किया और हम इंशाल्लाह ताला इस पर, मैं समझता हूँ कि सबका इत्तफाक़ हो सकता है यूके के अंदर भी।
अगर जिस तरह आपने फरमाया कि एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम हुआ चांद की रोयत के हवाले से पिछले दिनों, तो बातें तो हो जाती हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम किस तरह आपस में नज़दीक हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है।
मेरे ख्याल में उनके आपस में भी खुद मीटिंग्स हुई हैं और उनके अंदर बाकायदा रोयत हलाल कमेटी के अंदर बहुत काम हुआ है और हमने पेशरफ देखी है। अभी मौलाना के भी जो गुफ्तगु से अंदाज़ा हुआ और मैं जो खुद देख चुका हूँ उनके उनके भी, जिस तरह से हमारे यहाँ काफ़ी एक कह लें कि हमने सिर्फ हेयर से जैसे कहते हैं ना कि सुने सुनाए पे नहीं बल्कि बड़ी मजबूती से उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, इसी तरह से उनके यहाँ भी काफ़ी काम हुआ है और उन्होंने कौम के प्रेशर के तहत काफ़ी इस पर मेहनत की है। हवा में वो भी वह काम नहीं कर रहे हैं उन्होंने, मैंने खुद देखे उनके सारे कैलकुलेशन देखे हैं और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो खुद इंटरनेट पर मौजूद हैं और उनके बाद उलमा के बयान वगैरह उनसे बात भी हुई है मैंने, मैं उस वक्त भी कहा था बात भी की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों की हमें खुशी है कि आप लोग इस तरह से काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं।
और जिस तरह उन्होंने अभी कॉल करके यानी बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है अहले सुन्नत कम्युनिटी को भी, अहले तशीह को, कि हम किस तरह आपस में काम करने का जज्बा मौजूद है अंदर है,
उनके यहाँ भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी शुरू से मौजूद था, उनके यहाँ भी मौजूद है, था, है, रहेगा, सब में है और मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी काम हो सकता है और ये मेरे ख्याल में उनकी और हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। जो लोग चांद से मुतालिक कम्युनिटी काफ़ी परेशान थी कि क्या होगा क्या हो रहा है, अभी आपका इसी साल 85% उनका भी कहना कि उनकी कम्युनिटी ने फॉलो किया, बहुत पॉजिटिव साइन है, ये खुद एक यानी एक पॉजिटिविटी है दोनों कम्युनिटी की तरफ से कि मेजॉरिटी लोगों में इतना शोर बुलंद हो गया कि वो हेयर से पे हर कहीं यानी सुनी वगैरह।
और ये एक चांद का ऐसा मसला है कि चांद के मसले पे अगर हम सब मुत्तफिक हो जाते हैं तो बाकी मसाइल पे भी हम अपने इख्तलाफात को साइड पे रख के
मेन हाँ मेन चीज़ें यही है कि हमारे ईद त्यौहार वगैरह मेन चीज़ों पर इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, उस पर हमें इतफाक एक जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई चीज़ें हैं उन सबको इकट्ठे लेके चलें, बाकी आगे कल्चरल चीज़ों के मुताबिक कोई इशू नहीं है। हमारा आशूरा हो उनके यहाँ भी मुझे पता है कि मजालिस होती हैं उनके यहाँ, मुझे पता है कि वो भी मसायब पढ़ते हैं, मुझे पता है कि उनके यहाँ भी बाकायदा अहतमाम किया जाता है, तो अगर हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर हम लेके चलें सारा का सारा और उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा ना करें तो आगे फिर छोटे छोटे मसाइल को।
अगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा उससे पहले कॉलम रही होता है, सवाल ये होगा कि जो प्रैक्टिकली जो है मजलिस उलमा जो है वो इस तरह जो तंजीमों की तरफ से अगर दावत आ रही है तो वो प्रैक्टिकली किस तरह उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं कॉलर को खुश आमदीद कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं।
राजा जाहिद नवाज जनाब मेरा नाम है और ब्रिटिश मुस्लिम फोरम रोयत हिलाल बोर्ड का मैं रुकन हूँ और नूर टीवी पे अक्सर आप रोयत हिलाल का अगर प्रोग्राम आपने देखा तो मेरे प्रोग्राम आप यकीनन देखते होंगे। अभी जो कॉल आई है अलामा मुफ्ती नसीरुल्लाह नक्शबंदी साहब की उसकी तायद में मैंने कॉल की है आपको मुबारकबाद देने के लिए और कुछ हकायक जो है उनसे अदा करने के लिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह
खुदा ताला आपको तौफीक दे। कोई और मैसेज अगर आप अहले बैत टीवी के व्यूअर्स को देना चाहें।
चाहता हूं जनाब के पहली बात तो ये है कि अहले बैत टीवी को आपको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि आपने बर वक्त इस प्रोग्राम का इत्माम किया और फ्राइडे जो ईद मनाई गई ईद उल फितर उसकी ताईद में ये प्रोग्राम है। गुजारिश ये है कि वेनसडे जब बल्कि ट्यूजडे 7 तारीख को जब सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज ने ये हुक्म जारी किया कि चांद देखा जाए, हमने उसी वक्त उस बात की मजम्मत की अपने प्लेटफॉर्म से कि आज 28 रमजान और मुबारक चांद देखने की कोई गुंजाइश नहीं है और उन्होंने फिर अपनी तारीखें बदल के 28 को 29 बना दिया और जब 29 रमजान था तो उन्होंने जो अपनी सरकारी ऑफिशियल तारीख थी उसको 30 रमजान और मुबारक बना दिया। तो मैंने ये बर वक्त कहा था कि कौलन सऊदी अथॉरिटीज ने 30 रोजे मुकम्मल किए हैं और अमलन 29 रोजे मुकम्मल किए हैं और ये कौल और अमल का जो तजाद है इसके जिम्मेदार वो खुद हैं और वो खुद बता चुके हैं कि उनके नजदीक जो 9 जुलाई को उन्होंने रमजान अल मुबारक का आगाज किया था वो गलत था और हकीकत में उनका 10 तारीख का जो फैसला वो दुरुस्त नहीं, 9 तारीख जुलाई का वो रमजान अल मुबारक का आगाज करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। अब यहाँ पर जो सवालिया निशान उठता है वो ये है कि इतनी देर उनको ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि हमने रमजान का रोजा गलत रखा था। अगर गलत था उन्होंने 28 दिन इंतजार करके फिर कौम को इस शुबा में डाल देना कि हमने रमजान मुबारक का आगाज गलत किया था, इतने दिन वो कहाँ थे और उनकी जो तौहीद परस्त वो जो बातें करते हैं वो उनका जो सारा का सारा फिक्र और सोच थी वो कहाँ थी, 28 दिन क्यों लगे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि उन्होंने फैसला गलत किया। हकायक यही है कि वेनसडे सऊदी अरेबिया में कोई रोयत का इम्कान नहीं था। हमारा इतराज सऊदी अरेबिया के ऐलान पर है, ऐलान किया गया है कि हमने चांद देखा है और हम बरतानिया में रह रहे हैं,
برطانیہ میں جن لوگوں نے سعودی عربیہ کی تقلید کی ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی، عذر شفقت، عذر محبت، آپ فقط یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ میں کس شہر یا کس قصبے میں وہ چاند نظر آیا ہے وینسڈے کو؟ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مراکش میں چاند نظر آیا ہے تھرسڈے کو، تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مراکش کی کون سی جگہ پہ نظر آیا ہے، اس کا عرض البلد کیا ہے، اس وقت چاند کی پوزیشن کیا تھی، اس کی افقی بلندی کیا تھی؟ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایک سیکنڈ بات اگر میری مکمل ہونے
دیں، اگر
ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران میں چاند نظر آیا ہے تھرسڈے کو، تو ہم ابھی حمد تعالیٰ ثابت کر سکتے ہیں کہ کہاں نظر آیا ہے، لہذا فقط یہ کہہ دینا کہ سعودی میں نظر آ گیا ہے یہ کافی نہیں، بتائیں کس جگہ آپ کو وینسڈے نظر آیا ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ وہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ صحیح تھا یا درست، فلکی حسابات کی روشنی میں اس کا جو ارتفاع تھا وہ فقط ایک ڈگری کا تھا چاند کا، اس صورت میں ہلال کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا تھا، لہذا فرائیڈے کی عید الفطر جو ہے حق الیقین، حق اور سچ تھی اور یہ فیصلہ درست کیا گیا ہے۔
شاہد نواز، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ موجود ہوں لائن پہ۔
جی فرمائیں جناب۔
جس طرح نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے پہلے کال کر کے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے اور مجلس علماء شیعہ جو تمام شیعہ مراکز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کو راضی ہیں، تو اس معاملے میں جو پریکٹیکلی جو مشکلات ہوتی ہیں کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، ہم کس طرح ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں؟
اب جو بین الاقوامی بدلتے ہوئے حالات ہیں اور یہ جو فیصلہ کیا گیا سعودی عربیہ کا، میں دیکھتا ہوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت بالخصوص بریلوی مکتب فکر کے علماء مسئلہ رویت ہلال پر بھی انشاءاللہ جمع ہو سکتے ہیں، اور ان کے اس کے فوراً بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اصول میں کوئی فرق نہیں، آپ کا اصول بھی چاند کے قابل رویت کا اصول ہے، اہل سنت والجماعت کا جو اصول ہے وہ بھی چاند کے قابل رویت کا ہے، اور جو برتھ آف نیو مون کو فقط فالو کرتے ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گے، اور ہمارا جو اتحاد جس کا آغاز ہم نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے کیا ہے، اس کے اندر وسعت اور یہ وسیع تر اتحاد ہو سکتا ہے، اس پر دونوں جماعتوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کے جو حضرت نے ابھی اشارہ کیا ہے آپ کے چینل پہ، کہ دیکھیے اس وقت جو ہے جو بہت سارے حالات بدل رہے ہیں، حضرت سیدہ پاک حضرت سیدہ زینب کی قبر مبارک پر حملے کے بعد اب کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، اور یہ میں فخر آج محسوس کر رہا ہوں کہ اہل بیت ٹی وی پہ میں یہ ٹیلی فون کر رہا ہوں، حضرت سیدہ زینب کے مزار کے پر حملے کے بعد، جنت البقیع کی ڈسٹرکشن کے بعد، اب ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہمیں اہل بیت پاک کی محبت میں فنا ہو کر اپنے اندر یکسوئی اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔
ماشاءاللہ،
بہت شکریہ، بہت شکریہ زاہد نواز صاحب کہ آپ نے نہایت ہی احسن طریقے سے دونوں جو کمیونٹیز ہیں اہل سنت اور اہل تشیع ان کو نزدیک لانے میں جو آپ نے ذکر کیا، بہت ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، نہایت ہی احسن طریقے سے انہوں نے،
جی زاہد نواز صاحب نے اور مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب دونوں کا میں نہایت شکر گزار ہوں، انہوں نے موقع دیا کہ اس طرح سے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے بات پیش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر اگلے ایک دو دن کے اندر اپنے آپس میں میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہو سکتا ہے برٹش مسلم فورم کی طرف سے جو رابطہ کیا گیا ہے، میرے خیال میں جتنے بھی اہل شعور افراد ہوں گے اب وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلافات دیکھیں، دونوں طرف موجود ہیں ایسے افراد کے جو ناسمجھ بھی ہیں، نادان بھی ہیں، اور جان بوجھ کے ایک فضا خراب کرنے کا بھی ایک پورا کا پورا سلسلہ کرتے ہیں، ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، میرے خیال میں اگلے ہماری ہم ایک میٹنگ کال کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے پاس کوئی آپ لوگوں کا رابطہ نمبر وغیرہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمیں کنٹرول روم میں دے دیں یا بعد میں ہمارا نمبر لے لیں، میں اوپن ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگ علماء ہمارے سب کے سب جتنے بھی ممبران ہیں اس بات پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کے حرم پاک کی جو بے حرمتی کرے، چاہے جنت البقیع کا مسئلہ ہو، چاہے جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کا مسئلہ ہو، اس کے اوپر ہمیں مل کے اگر ہم لوگ ایک اتفاق و اتحاد کے ساتھ سٹینڈ نہیں لیں گے تو اہل بیت علیہ السلام پھر بعد میں اور بزرگان دین اور صحابہ کرام مقدسات ان سب کی توہین کی جائے گی، اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے اور ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے رہیں گے کہ یہ शिया हैं या सुन्नी हैं, और फिर हमारे सारे मुकद्दसात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। आज तमाम के तमाम मुकद्दसात के एहतराम की खातिर हम सबको इत्तफाक़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो दुश्मन जो है वो इसी तरह हमारे दरमियान में बीज बोता रहेगा और वो जहरीले पौधे उगते रहेंगे दोनों तरफ, और वो जानबूझ के हमें लड़वाते रहेंगे जो दुश्मनों के हाथों में इस्तेमाल होते रहेंगे।
बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनको अहले बैत टीवी की जानिब से भी जो हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि जिस तरह इन्होंने नूर टीवी की तरफ से और ब्रिटिश मुस्लिम फोरम की तरफ से आपने कॉल की, नहायत हम आपके इस इकदाम को सराहते हैं कि आपने किस तरह लोगों में आगा एक फितरी शऊर जो है वो बुलंद हो रहा है कि किस तरह हमें अब दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हो जाना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं और चांद के मामले को लेकर अगर दोनों कम्यूनिटीज़ में आपस में तमाम मसाइल को एक साइड पर रखकर नज़दीकी पैदा होती है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है?
मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव साइन है। देखें, इस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा, हमारा दूसरा जो था वो यही था इशू जिसमें हम चाहते थे कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम उस पर होगा। अब क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इस पर अनकरीब हमारी मीटिंग है, कल परसों में हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद हम एक ऐलान करेंगे पूरी कौम के लिए, और उसमें हम चाहेंगे ब्रिटिश मुस्लिम फोरम ने, जिस तरह से ये न्यू टेलीविजन और दूसरे लोग के सारे हमारे साथ मिलकर, हम लोग इकट्ठे मिलकर एक बहुत बड़ा स्टैंड लें कि ये जो आज बागियों ने सिलसिला शुरू किया शाम में और ये खुदा ना खासा फैल रहा है, और यहाँ पे भी शाम के जो बागी उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पे ऐलान किया कि आइंदा जो है वो हम नजफ़ अशरफ में अमीर रोमिन के रोज़े की बेहरमती करेंगे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग हज़रत अली सलाम के हरम की जो है बेहरमती पर लोग बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं आज, तो मेरे ख्याल में अगर आज नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा के सिलसिले में अगर हम एक कुछ कर लेते हैं, आगे सहाबा कराम का है, आगे सहाबी रसूल जनाब हमारे यासिर जनाब अवैस करनी ताबेईन हैं, और ताबेईन के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मकाम है, और इस तरह से और बहुत से मकामात की शाम में बहुरमती की गई है, हत्ता चाहे वो ईसाइयों का बनाया हुआ मजार जी हज़रत हुजर बिन अदी जो सहाबी रसूल हैं और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बेइंतहा अहादीस भी कहीं, इनका मकाम क्या है कि उनकी कब्र को बाकायदा खोदने की कोशिश की गई। यही ये वही कड़ियाँ हैं जो पहले जन्नत अलबकी को इन्हदाम कर चुके हैं, जो पहले और रोज़ों के तोहन कर चुके हैं। हम मैं अब यहाँ तक आपके खुल्लम खुल्ला आपके सामने, हत्ता हम ईसाइयों और यहूदियों के मुकद्दसात के तोहन को जायज़ नहीं समझते, हत्ता हिंदू अहल किताब भी नहीं हैं, और सिखों के भी मुकद्दसात के तोहन को हमारे फुकहा कहते हैं कि नहीं, ये जो कुरान की आयात हैं कि दूसरों के कभी भी कोई मुकद्दसात की तोहीन नहीं करनी चाहिए कि जिससे खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहें, हम मुकद्दसात की तोहीन को जाए। अभी चाहे ईसाइयों ही ने बना रखा था हमारे मुसलमानों के और यहूदियों के मुताबिक चलें, फ़िलिस्तीन में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है वो रोज़ा है, उनकी कब्र मुबारक जो है वो वहाँ पर है, लेकिन ईसाइयों के नज़दीक शाम में थी, शर्क यानी ईस्ट सीरिया के अंदर जो है उन्होंने बना रखा था, चाहे उनके नज़दीक चाहे गलत हो, मेरा सवाल ये है कि उनके नज़दीक वो मुकद्दस जगह है, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रोज़े को मानते हैं कि यहाँ पर उनकी कब्र मुतहर है, और उस कब्र मुतहर की बेहरमती की गई, वहाँ जाके बम मारा गया, और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं हम कलमा गो हैं, वो बागी जो हैं वो इस तरह की हरकतें करें, ये पूरी दुनिया में क्या मैसेज भेज रहे हैं हम? मेरे ख्याल में हमें सबको मुतहद होना पड़ेगा, और ये बड़े सीरियस इशूज़ हैं, चाहे चांद का हो या जनाब उससे, चांद का तो चाहे एक छोटा इशू है, हर साल आता है, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा नवासी रसूल, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की बेटी हैं, अमीर रोमन की बेटी हैं, और यानी उनकी हुरमत को पामाल किया जाए, यहाँ तो यानी इतनी जुरत करें कि एक मरतबा वो रॉकेट मारें और वो वज़ू खाने में गिर जाए, दूसरी मरतबा दोबारा जाके रॉकेट मारें, वहाँ 5 अफराद शहीद हो जाएं, 20 अफराद को मार दें और कहें कि ये फिर मिस हो गया, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बाकायदा हरम को गिरा देंगे। हमने उस वक्त भी बहरहाल यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है यूनेस्को के अंदर, हमने बाकायदा उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की, और हमारा पूरा माह रमज़ान में कोशिश होती रही, हम प्रेशर बिल्ड करते रहे, लेकिन आइंदा मेरे ख्याल में हम अनकरीब एक बड़े पैमाने पर एक मुजाहरा भी करेंगे, बरतानिया हुकूमत से मुतालबा करेंगे यूएन से कि भई ये बागियों की मदद को बंद किया जाए, और ये जितने भी एक दुश्मनों के हाथों में इस्तेमाल होने वाले इस्लाम के अंदर जो अनासर पैदा किए जा रहे हैं, जो आइंदा ये कस्में खा रहे हैं कि हम शाम से निकल के फिर आगे और दूसरे मकामात पर जितने मुकद्दसात हैं सबको ढा देंगे, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जितने भी औलिया के मज़ारात हैं वो उनके मुतालिक खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि हम अभी कमज़ोर हैं वहाँ पे, हम आइंदा जब मजबूत हो जाएंगे तो हम सारे के सारे वो ढा देंगे औलिया के नाम के, यानी इस हद तक हम बैठ के हमारी गैरत जो है वो बर्दाश्त करें कि हम लोग सिर्फ तमाशा देखते रहें। मेरे ख्याल में मुकद्दसात की तौहीन से पहले पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हम आज हमारे मुकद्दसात की तौहीन है, कल आपके मुकद्दसात की तौहीन है, हत्ता आपके तमाम औलिया का हम एहतराम करते हैं, हम अगर यानी जितना भी हो हम ये नहीं कहते हैं कि किसी की मुकद्दसात की तौहीन की जाए, तो मेरे ख्याल में इस पे इत्तेफाक की इत्तेहाद की ज़रूरत है।
तमाम मराजे जो हैं उन्होंने भी इस बात की काफ़ी क्लियर किया होगा कि किसी के भी मुकद्दसात की जो तौहीन है वो हराम है,
जी हाँ,
तो ये तो बात बिल्कुल इजाज़त भी नहीं देती। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये अभी वक्त नहीं आ चुका कि अहले सुन्नत और अहले तशी ये जो तकफीरी अनासिर हैं और ये जो खवारिज हैं, इनको अपनी सफ़ों से अलग करके बिल्कुल इनको, यानी जो वो इस्लाम का लबादा ओढ़ कर ये सब हरकतें कर रहे हैं, और यहाँ से भी लोग लड़ने के लिए सीरिया का रुख किया हुआ है, और कुछ लोगों को ये भी खतरात लाहक हैं कि वो लोग वापस जब वो लड़ रहे हैं वो यहाँ वापस आएँगे, यानी यहाँ के बॉन लोग जो हैं वो वहाँ पर जाके लड़ाई कर रहे हैं।
देखिए अभी हमारी बका की जंग चल रही है, अभी आप देखें तो पूरे आलम इस्लाम में एक इंतशार है, और ख़ुद बरतानिया के अंदर बहुत से लोगों का ये पेश खेमा है कि खुदा न खासा यहाँ पे एक फ़िरका वारियत की बुनियाद बोई जा रही है, और ब्रेडफोर्ड के अंदर बाकायदा पर्चे तकसीम किए गए हैं, इस तरह से और जगहों पे हो रहा है, सिलसिला शुरू हुआ है कि खुदा न खासा आइंदा यहाँ पे एक इस्लाम दुश्मन अनासर एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, और खुदा न खासा हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हम लोग आपस में मुत्तहिद रहेंगे तो हमारी बका है, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे हमारी बका का कोई मसला जो है वो नहीं रहता। मैं सबसे कहूँगा खुदारा इस मसले को सीरियस लें, हमारे लोग तो हमारी तरफ से भी अगर कोई एक इंतहा पसंद अनासर हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं, खुल्लम खुल्ला मजम्मत करते हैं, और उनको और बोर्ड नहीं लेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम आपके साथ मिलके और हमारे आपकी तरफ से तो जितने भी हम लोग हैं इस पर एक मुकद्दसात की जो तोहीन है मेरे ख्याल में इसको जो है वो सीरियस लिया जाएगा इंशाल्लाह, अमन करीब इसमें आपके साथ
इस तरह के जो मसाइल हैं जिस तरह चांद का मसला, मुकद्दसात की तोहीन, इससे हम आपस के जो यूके में हमारी अहले सुन्नत कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और अहले तशी, हम आपस में मिल के एक दूसरे से सिला रहमी और रिश्तेदार, यानी इस तरह के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। और जिस तरह पहले भी सवालात काफ़ी हुए कि हमें अब आगे बढ़ना होगा, अपने मसाइल को साइड पे रखना होगा और तमाम मसाइल को जो है मिल बैठ कर तय करना होगा, क्योंकि ये जो तकफीरी ग्रोह हैं दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान में जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हर रोज़ बसों को जला दिया जाता है और मुख्तलिफ लोगों को शहीद कर दिया जाता है, तो इससे भी हमें इनको सफ़ों से अलग करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा जो हमारे एक भाई ने सवाल किया था, जाबिर आब्दी साहिब ने, उन्होंने सबसे पहले आपसे सवाल किया था साइंटिफिक कैलकुलेशन और साइंटिफिक एड के बारे में, कि ये जो प्री अनाउंस कर दिया जाता है, पहले अनाउंस कर दिया जाता है उस बारे में।
वो 100% नहीं होता प्री अनाउंस जो है ना, कि उनका अंदाज़ा क्या है, साइंस जो है वो पहले बता देती है कि भी चांद इस वक्त वो आइंदा 70 साल 100 साल तक का आपको कैलकुलेशन बता सकते हैं कि कब होगा, तो वो हम उससे मदद ले सकते हैं प्रिडिक्ट करने के अंदर, लेकिन 100% नहीं होता। यानी वो एक मरतबा, हमारे फुकहा ये कहते हैं कि एक मरतबा साइंस कह देती है कि इस दिन रोयत का इम्कान ही नहीं है, जैसे वो भी जाहिद नवाज साहब बात कर रहे थे कि मसलन उन्होंने कहा कि भाई मसलन सऊदी अरब के अंदर जब तक ये चांद सियासी रहेगा ना तब तक मसाइल खड़े होते रहेंगे, हम सियासत से इसको निकाल के बाहर लेके आएँ। एक मरतबा साइंस कह देती है कि इस जगहों पर रोयत का इम्कान ही नहीं है, वहाँ पर अगर कोई गवाही देता कि मैंने देख लिया तो उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, हमारे फुकहा कहते हैं।
बिल्कुल, हराइजन्स के बारे में उन्होंने बात की थी, उफ के बारे में।
देखिए हराइजन पे इख्तलाफ है, हमारे खुद फुकहा में इख्तलाफ है कि इख्तलाफ आफाक का मसला है, इत्तेहाद आफाक का मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी रोयत का जब इम्कान है तो साइंटिफिकली उसको हल किया जा सकता है कि हम उसको फिर भी उस फतवे के बावजूद भी उसको हल किया जा सकता है। तो और हम यही कहेंगे कि अगर यानी साइंटिफिकली जब एविडेंस मौजूद होता है, जब वो साइंस कह देती है कि भाई आज रात चांद मौजूद है, एक तो ये है कि फिर भी आया इस्तेहलाल करें और रोयत के लिए तलाश करें, और अगर रोयत हो जाए तो फिर करें, दूसरा ये कि आया सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशंस को तस्लीम किया जा सकता है, और कि या कि खुद इस्तेहलाल करें, रोयत ज़रूरी है, अगर रोयत हो जाती है बहुत सी जगहों पे दूसरी जगहों पे रोयत नहीं होती है, आया उस रोयत को दूसरी जगह माना जा सकता है, हमारे फुकहा कहते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको मान सकते हैं।
और उनका ऑफिस से जो है आपस में रब्ता होना, जो
हमारे ऑफिस से रब्ते होते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल में शऊर ये बुलंद करें कि अगर हम लोग खुद से खुद अगर आपको ऑफिस के कहने पे यानी इत्मीनान हो जाता है तो उसको माने, अगर हमारे कहने पे कि हमने आ रही रिसर्च है इस पे इत्मीनान होता है तो उसको फॉलो करें। हम ये कभी नहीं कहेंगे किसी ऑफिस को ना माने, इसको ना माने, उसको ना माने, दूसरे के ऐलान को ना माने, कोई ऐलान नहीं, ये हमारा काम नहीं है कि हम दूसरों की निगेट करें किसी।
बिल्कुल, अगर नेक्स्ट सवाल जो आपसे करूँगा, जाहिद नवाज साहिब ने जो कॉल की, उन्होंने सऊदी अरब के बारे में बहुत ज़्यादा यानी अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया कि किस तरह 28 रोज़े के दिन आप किस तरह चांद की रोयत का वो देखने के लिए बैठ सकते हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं किया जा रहा है एक सरजमीन से?
देखें अब मैं आपको सऊदी अरब का एक इशू तो खुद उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक चांद सियासी रहेगा और सियासत के नज़र होता रहेगा तब तक यही इशूज़ होंगे, और सऊदी अरब का हमेशा से इसके अंदर बेनतहा मौजूदा यानी सऊदी गवर्नमेंट का हमेशा से हाथ रहा है के चांद के ख़िलाफ़ करने में, उसके इख्तलाफात डालने में, और यहाँ पे जब तक लोगों में शोर बुलंद नहीं होगा, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सबूत दिया कि आप लोग सिर्फ हुकूमतों के ऐलानात को नहीं मानते हैं बल्कि आप लोग साइंटिफिक प्रूफ के तहत, मैं इसको इस पे आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सियासी ऐलानात का जो है वो हमें थोड़ा सा हट के दलीलों के ऊपर आना पड़ेगा, दलील देखनी पड़ेगी, सबूत देखने पड़ेंगे, रोयत के शहूद देखने पड़ेंगे, साइंस के इस पूरे के पूरे सबूत को देख के हम आगे बढ़ें बजाय इसके कि हम सियासी बना दें उसको। मैं बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता
हूँ। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि यूके में रहते हुए, यूरोप में रहते हुए, वो कहते हैं कि नहीं, हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, तो उनकी बात में किस हद तक जो है वो?
मेरे ख्याल में अब सऊदी अरब का जो है इशू सबको समझ में आ चुका है, और उस मसले को जो है आइंदा हम ड्रॉप कर दें। और मरकजियत जो है वो इस्लाम को है, मरकजियत मक्का को, खाना काबा को है, ना कि हुकूमतों को। वो हुकूमतें खुसूसन के जो अपने लिए शराब को जायज़ समझती हूँ, लोगों को कहें हराम है, अपने लिए जो है वो जुर्म को जायज़ समझते हैं, लोगों को से कहें कि जायज़ नहीं। तो ये मेरे ख्याल में हम ये इन मामला को छोड़ के आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, हमें यूरोप और यूके में एक ऐसे मरकज़ को हम, यानी कोशिश करें कि हम एक मरकज़ को तैयार कर सकें बजाय इसके कि हम सऊदी अरब या ईरान या पाकिस्तान की तरफ पलटें, हम यूके में एक ऐसा मरकज़ तैयार कर सकें।
जी हाँ, यूके और यूरोप को अगर हम एक कंपोनेंट बना लें, और इसके लिए हम एक यूरोप को सबको हम मिलकर अगर साइंटिफिकली हल कर लें,
और आज आप देख लें जिस तरह के प्रैक्टिकली उन्होंने कॉल करके ये कह दिया कि तमाम लोग जो है आपस में मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आगे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइएगा।
मेरा नाम है मीर अफसर अली फ्रॉम ग्लासगो यूके।
जी, अपना सवाल बताइएगा।
मेरे दो सवाल हैं जी, इज इट पॉसिबल टू टॉक इन इंग्लिश?
यस
यस, इट्स पॉसिबल।
इज इट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू डिक्लेयर्ड एज अ मजलिस ए उलमाए शिया यूरोप सेंट्रल कैबिनेट? इट इज वेरी नाइस टू सी एंड इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल द शिया मुमिन इन यूके, not only the UK, whole globe. The my first question is that the people regarding the sighting of the moon, a different community, different group of people in Shia facing different days of celebrating the Eid. Is it depends upon to whom we are taqliq, or is it depend upon where you are presenting? This is number one question. Number two is, see, the current scenario in Syria is having all kind of Muslims in trouble. Why not to make a challenge to Syria, saying that what the people doing is very, very unforgettable and intolerable, and why not to give a kind of note or protest or challenge from the Shia community from UK? This is my question, sir.
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अगर सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल क्या आपको सुनाई दिया या?
जी, पहला उनका सवाल है तकलीद के नुमान से कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अशो यू दैट द मराजे विल गिव यू द क्राइटेरिया, द आयतुल्ला और एनीवन हु यू डू तकलीद ऑफ विल गिव यू द क्राइटेरिया, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द साइटिंग ऑफ द मून, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड योर सेल्फ। मर्जा तकलीद आपको क्राइटेरिया और बताते हैं कि यानी ये बेसिस हैं, ये बाकायदा पूरा सिलसिला है जिसके ऊपर आप जो है चांद को पहले अब आपके लिए अपना खुद रोयत जो है वो मर्जा की ज़िम्मेदारी नहीं है। वो ये कहते हैं कि रोयत का आपको अपना इत्मीनान ज़रूरी है कि आप इस ऐलान को मान सकते हैं नहीं मान सकते, आया आपको इत्मीनान है नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक बात पहले
अगर इंग्लिश में जवाब दें क्योंकि इन्होंने
द क्राइटेरिया महाराज आयतुल्लाह विल ओनली गिव यू द क्राइटेरिया एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द साइटिंग ऑफ द मून, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द अनाउंसमेंट ऑफ मजलिस उलमाए शिया यूरोप दैन यू कैन फॉलो मजलिस उलमाए शिया यूरोप ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर मंथ। हाउएवर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट एंड डू योर ओन रिसर्च टू डिटर्मिन द फर्स्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर मंथ। And if you believe that our, and if you're satisfied with our announcement, then you may celebrate Eid or the first of the month of Ramadan according to the announcement that we make.
Aga hamare sath ek aur caller maujood hain, pehle unki baat ko shamil karte hain. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ji, farmaiye, kaun baat kar rahe hain aur kahan se?
Ji, main Sayyid Safir Adar ji, Canada, Calgary se baat kar raha hoon.
Ji, farmaiye.
जनाब, पहले तो मैं तमाम उलमा को सलाम अर्ज करता हूँ जी।
वालेकुम सलाम।
दूसरा मैं जनाब जैद नवाज साहब और मौलाना नसीरुल्ला नक्शबंदी साहब को भी मैं खुश आमदेद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एलएल बैत टीवी पे आके अपना मौकफ जो जाहिर किया है, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। और उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि जैसे कि हम बहुत सारे सालों से मौलाना मुनी मुफ्ती साहब के पीछे जो भी वो ऐलान करते हैं अहले तशी उनके साथ मुहल्लक हैं और कभी भी हमारी ईद अहले सुन्नत के अलावा नहीं हुई। हम अहले सुन्नत और अहले तशी मुफ्ती मुनीमुर रहमान साहब का जो भी ईद के बारे में ऐलान होता है हम उसको मुकम्मल फॉलो करते हैं
पाकिस्तान।
तो मेरी मौलाना साहब मौलाना नसीरुल्लाह नक्शबंदी से दरख्वास्त ये है कि आप कभी विजिट हमारे कैनेडा और अमेरिका का भी करें और यहाँ के जो अहले सुन्नत उलमा हैं उनको भी और अहले तशी उलमा को भी बुला के एक मीटिंग करें। आप चाहें तो मेरे मेहमान ठहर सकते हैं, आके यहाँ पर भी जो है मसला वो हल कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ईद जो है अहले तशी ने जुमे को की है और अहले सुन्नत ने जुमेरात को की है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने बहुत अच्छा मसला छेड़ा हुआ है और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आगा। ये भी बहुत अच्छी कॉल जिस तरह उन्होंने जिक्र किया और तमाम ना
उन्होंने भी हल पेश किया
बिल्कुल, और तमाम लोगों की इस वक्त ख्वाहिश है कि दिली ख्वाहिश है कि तमाम लोग एक दिन मिलकर ईद मनाएं।
मेरे ख्याल में अगर इसको उलमा किराम भी देख रहे हों दोनों तरफ के और वो देखें कि कौम में कितना दर्द है इस मसले के ऊपर और वो कितना यानी अगर मुब्तला हैं लोग और वो चाहते हैं कि मसला हल हो, और मेरे ख्याल में बड़ा है कि पॉजिटिव साइन है। और मैं हमारे जो लास्ट वसीद सफ़ीर हैदर साहब ने जिन्होंने कैलगरी कनाडा से कॉल की और उन्होंने भी वहाँ पे अपने दर्द का इजहार फरमाया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऐलान के ऊपर जो है सारे शिया सुन्नी कर सकते हैं और वहाँ पर जब कर लिया देखें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी हो जाएगा अन करीब। देखें अब ऑलरेडी हमारे खुद शियों में हुआ और अहले सुन्नत में अपने अपने तौर पे कोशिश की और साइंटिफिक जब प्रूफ्स को सारे के सारे जस यानी उसको कैलकुलेट किया और उसको देखा और उसके साथ साथ शरीयत के तमाम सहारा की रसूल इस्लाम इल्म का मुखालिफ नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हम साइंस के दुश्मन मुखालिफ हैं, नहीं, इस्लाम कहता है कि हम तमाम इल्म जो है तमाम उलूम के इस्लाम ने जो है वो बेनतहा उसको जो है हासिल करने के लिए मालूमात हासिल करने के लिए इस्लाम मोमिनीन को मुसलमानों को सबको इनक्रेज किया। मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव साइन है और अनकरीब आप लोग इसके बहुत ही पॉजिटिव असरात पूरी की पूरी कौम के ऊपर जो मुतरतब होंगे उसको देखेंगे। एक सवाल जो हमारे बरादर का था उनसे पहले जिन्होंने
जो ग्लासगो से उन्होंने कॉल की थी,
हाँ ग्लासगो से जिन्होंने कॉल की थी, द सेकंड पार्ट ऑफ हिज क्वेश्चन वाज अबाउट
मीर अफसर अली ग्लासगो से उन्होंने सीरिया के बारे में
सीरिया इंशाल्लाह हमारा जो सीरिया पे है देखें हमारा पूरा महीना इस पे चलता रहा है और हमारे उससे बल्कि पहले से जब फर्स्ट अटैक हुआ था जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के हरम पे द फर्स्ट अटैक आफ्टर द फर्स्ट अटैक वी हैव बीन एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द इशू ऑफ जनाब ज़ैनब हरम एंड ऑल द होली साइट्स। हमने बाकायदा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन लंदन में बनाई है और हमारी इसके अंदर काफ़ी काम हो रहा है, उसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, तक क्रिश्चियंस आर ऑन बोर्ड, उसके अंदर अहले सुन्नत शिया काफ़ी हैं लेकिन सब नहीं है। हम इसको अभी तक हमारी उसके अंदर चल रही है, काफ़ी प्रोसेस चल रहा है, हम उसको और तौसी देंगे। वी विल फर्दर एक्सपेंड ऑन दर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर होली साइट्स। हम उसमें तमाम मुकद्दस मकामात के हुर्मत के एहतराम के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी काम हुआ।
मैं अभी सिर्फ अहले तशीब नहीं सिर्फ बल्कि जिस तरह अहले सुन्नत बरादरान ने हमें ऑन एयर कॉल करके अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें सबको मिलकर इसके आगे बढ़ना होगा और दुश्मन का मुकाबला करना होगा।
बिल्कुल,
तो आगा हमारे साथ यहाँ पे कॉलर मौजूद है, उनको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
जी, अपना नाम बताइएगा।
जी अली बोरा बोल रही थी। मेरी बात यह है कि अहले सुन्नत की तो वाज़े बात होती है, जब हम अहले तशी की बात करें तो इसमें दो ईदें मनाई जाती हैं। आपको भी
आवाज नहीं,
अगर आप थोड़ा सा लाउडली बोल सकें तो हमें क्लियर आ जाएगी आपकी आवाज़। अली भाई
अब आवाज आ रही है आपकी?
जी आप बोलें।
मैं ये कह रहा हूँ आती है बात अहले तशी में जो है फाउंडेशन फेडरेशन जो है वो हमेशा जो है वो एक दिन लेट ईद करते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो सुनियों के तो मसाइल बाद में आते हैं, लेकिन ये है कि क्या खोजा फेडरेशन वाले कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते या मजलिस उमेश या यूरोप उनके साथ कोई मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब ईद सेलिब्रेट करें या ऐलान करें? इसकी रीज़न ये है कि मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हल होंगे, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि कोई सेंटर और आयतुल्लाह के कॉलर जो है वो लादा कर रहे थे और शेयर में कौन से जो है वो इस दफा भी ऐसे ही हुआ, इस दफा भी उन्होंने ऐसे को किया है और हम लोगों ने जो है वो जुमे को किया है। वो
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली भाई ने आगा सवाल आपको
जी समझ में आ गया। पहली बात यह है कि बर्मिंघम से
अली साहब,
हाँ देखिए पहली बात यह है कि हमारी खुद उनसे मीटिंगें हुई हैं और हम जो अब तक हमारी मीटिंग उनसे 3 मीटिंगें हो चुके हैं हमारे, यानी अकेले नहीं बल्कि हमारी पूरी एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है उनके साथ और हमारी उनकी रोज़ हिलाल कमेटी के साथ।
हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम, आगा अपना नाम बताइएगा।
जफर मैं,
मेरा नाम अली जी।
जी अली कहाँ से बात कर रहे हैं?
फोर्स से बात कर रहा हूँ
जी, बताइए
जी। जी ये कल कुछ यहाँ इंग्लैंड में कुछ बंदे वो खालिद किया था हफ्ते वाले दिन, उसी मैंने पूछा, वो कहता है मेरा खालिद अफगानिस्तानी से है, वो लोगों ने कुछ खालिद किया था, ये किस तरह से है?
जी
ठीक है, आपके हम इसी सवाल का जवाब जो है वो दे रहे हैं क्योंकि अली भाई ने पहले बर्मिंघम से भी इसी मामले में कॉल की है।
हाँ अच्छा देखें, अभी बहुत से लोग आए होंगे, हम लोग तकरीबन 3:30 बजे से बैठे हैं।
बिल्कुल,
तो शुरू की हम लोग काफ़ी लंबी बहसें कर चुके हैं, मेरे ख्याल में अगर इसको एक रिपीट चलाएं,
बिल्कुल रिपीट,
और अगर ऐलान कर देंगे किस टाइम पर रिपीट होगा ताकि हमारे आप लोग प्रूफ सुन सकें, हमने अलबत्ता कि एक और प्रोग्राम करेंगे सिर्फ उसके अंदर हम दलीलें अगर हो सके, मैं जहन में आ रहा है कि हम सिर्फ उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे हम पेश कर सकें।
और नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम आगा ने बहुत ही मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू की है, पहले कर चुके हैं, अगर आपने पहले ट्यून नहीं किया अहले बैत टीवी को तो ये प्रोग्राम आपके लिए रिपीट चलाया जाएगा जिसका टिकर हम कोशिश करेंगे और एक प्रोमो बनाकर टीवी पे चलाया जाएगा बार बार ताकि आप सब लोगों को पता चले ये प्रोग्राम कब रिपीट हो रहा है और टिकर भी इंशाल्लाह चलाया जाएगा, इंशाल्लाह एक टिकर भी चलाया जाएगा। जी
जी, क्योंकि इंशाल्लाह काफ़ी बहसें हो चुकी हैं और रिपीट ना हो ताकि हम लोग बात तकरार ना करें। बात यह है कि हमारी 3 मीटिंगें कोएज के काउंसिल ऑफ यूरोपियन जमात जो अहले खोजा बरादरान के हमारे हैं उनके साथ 3 मीटिंग हमारी चांद के मसले पे हो चुकी हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला चांद ही के मसले पे भी और दूसरे मसाले पे हमारी उनके साथ मीटिंग है, करीब मेरे ख्याल में 2-3 दूसरे महीने में हमारी मीटिंग है, अगले महीने नहीं उससे अगले महीने अक्टूबर में हमारी इंशाल्लाह मीटिंग है। तो ये एक ऐसा इशू है कि हम इसको ख़ुद भी वो कर रहे हैं, ये आप लोगों के उसके ज़रूरत नहीं है बताने की कि ये जगहों पे जाएं, इन लोगों का अलग होता है, हमें यानी सब पता होता है, हमें अपनों का बेगानों का सब का पता होता है कि किस किस का कहाँ कहाँ और हमारे तफसील हर जगह पे नज़र है। कमरे में नहीं बैठे हैं आपके, आपको इंशाल्लाह ताला खुशी होनी चाहिए इस बात पर और आपको एतमाद होना चाहिए कि हम लोग महदूद नहीं हैं, कमरों के अंदर बैठ के नहीं चला रहे हैं, ड्राइंग रूम सियासत नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम लोग हर जगह पर एक यानी पूरी नज़र रखे हुए हैं, हमारी पूरी ग्रिप है तमाम मसाइल के ऊपर।
बिल्कुल,
अब उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है लेकिन किसी इतफाक पे हम नहीं पहुंचे हैं, हमने भी दिल्ला पेश किए हैं, वी हैव एग्रीड टू डिसएग्री, हम अभी तक हमारे इस नतीजे पहुंचे हैं कि भी हाँ ठीक है बाज़ इख्तलाफ नज़र हो सकता है लेकिन कोई मुखालफत नहीं, ना उनका हमारे से कोई वो मुखासमत या मुखालफत है ना हमारी उनके साथ कि ठीक है अभी वो नहीं कन्विंस हुए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वो भी उनको भी समझ में आएगा सबके समझ में आएगा। तो ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, मैंने पहले बात कही थी कि किसी भी मसले पे इख्तलाफ नज़र होने पे आप अपनी बात दूसरों पे तहमील नहीं कर सकते, इम्पोज़ नहीं कर सकते और हम लोग भी इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, हम चल पड़े हैं और 3 साल के अंदर यहाँ तक नौबत आई है कि हमारे साथ अक्सरियत जो है चल पड़ी है और हमारे साथ लोग खुद मीटिंग सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने बाकायदा ऑनलाइन हमें भी किए कॉल, जब उनके साथ पहली मीटिंग नहीं हुई, कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम देखा, उन्होंने हमें कॉल कर लिया, इसी तरह से दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन पर आ जाएंगे। हम आपको यकीन दहानी करते हैं कि इंशाल्लाह ताला टाइम लगेगा, सुनो और लेटर सब कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा ये था कि हमारे भाई ने कभी बहुत से लोगों ने कल किया, हम इसको पहले पेश कर चुके हैं, प्रोग्राम जब रिपीट होगा आप शुरू की इब्तदाई हमारी सारी दलीलें देखिएगा।
इसके अलावा जो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह और शिया टीवी की वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पे भी ये अपलोड कर दिया जाएगा प्रोग्राम ताकि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकें
इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में एक और हम अगर बात को क्लियर करते चलें कि दलीलें बहुत दी जा सकती हैं उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से क्योंकि कहें कि चश्मे मुसल्ला से यूके में नहीं था, यानी टेलीस्कोप से देखा जा सकता था, यूके के अंदर टेलीस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता था, यूके के उफुक के ऊपर जो दूसरे यूरोपियन ममालिक मौजूद हैं जैसे फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, और वहाँ पे उसके अंदर बाकायदा मौजूद था चांद, और इस तरह से बहुत सी दलीलें हमारे, हम चाहें तो घंटों इस पर बहस कर सकते हैं। एक इल्मी बहस को आवाम में किस तरह से पेश करना उसको सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता था हमने कर दिया। अगर कभी मौका होगा हम चाहते थे कि आज लोग सवालात करें और बहुत से लोगों ने सवालात किए,
बिल्कुल
जिनके फिर भी अगर हों आप हमें बाद में भी फ़ोन करके सवाल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए फिर दोबारा अगर कहेंगे तो प्रोग्राम भी करेंगे और इंशाल्लाह अपने अदिल्ला भी पेश करेंगे। इस प्रोग्राम को भी दोबारा देखिएगा और इंशाल्लाह फिर भी अगर हो तो आप लोग हमारे नंबर ले सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं।
बिल्कुल आगा मारूफी साहब, मैं आपकी जिस तरह आपने देखा कि काफ़ी अहले सुन्नत बरादरान ने कॉल की, अहले तशय्यो अमेरिका कनाडा हर जगह से हमें कॉल आ रही, तो आप किस तरह यानी कि आवाम का जो रद्द अमल चांद के बारे में और एक कम्युनिटी बनने का, उम्मत बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, तो इसको किस निगाह से देख रहे हैं आप और कितनी अहमियत है इसकी?
जी यकीनन ये ख़ुद एक बेचैनी की अलामत है। इंसान सब चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हों, हम इत्तेफाक़ के साथ एक साथ चलें, और ये सवाल का जहन में उभरना एक बहुत अच्छी अलामत है। और इंशाअल्लाह जो कौम के बुज़ुर्ग और साहबान हल व फसल हैं वो अफराद उन कौम की आवाज़ को और बातों को लेकर के इंशाअल्लाह बैठेंगे। हाँ, हर चीज़ का हल फौरी नहीं हो जाता है, इंशाअल्लाह इसमें जल्दी ही होगा। जब जैसे कि बैठने के लिए दावत भी दी है, बैठने के लिए हम कबूल भी कर रहे हैं, बैठेंगे भी एक साथ साथ इंशाअल्लाह, और नतीजा निकलेगा और एक उम्मत के तरीके से सामने आएगा
इंशाअल्लाह। आगा नियाज हुसैन नकवी साहब, जिस तरह की आपको इतना बोलने का मौका चांद की वजह से इतनी जो गुफ्तगू बहुत तवील हो गई, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यू पोर्ट में जो मोमिनीन हैं और उनको आप किस तरह इनक्रेज करेंगे कि वो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मजलिस उलमा शिया यूरोप के साथ और इमामिया यूथ के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन किस तरह करें?
माशाल्लाह ऑलरेडी हैं, तआवुन में हैं और मजलिस उलमा का जो ऐलान होता है वो फॉलो करते हैं। मैं समझता हूँ वहाँ गुंजाइश नहीं और इनक्रेज करने की, ऑलरेडी सारे
माशाल्लाह
उलमा की बात
ऑन बोर्ड
हैं, ऑन बोर्ड हैं, जो ऐलान होता है लब्बाई कहते हैं
माशाल्लाह। जी मौलाना अजमत अब्बास साहिब, जिस तरह अभी हम सारी ये गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आप मीडिया का रोल किस तरह देख पा रहे हैं, यानी मीडिया जिस तरह से हक़ को बातिल और बातिल को हक बनाकर पेश करता है, तो इस हवाले से जो चांद के मामले में मीडिया के रोल को आप किस तरह देखेंगे?
यकीनन मेरे ख्याल में एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब भी बड़ा वाज़ेह है और हर आदमी इस तरफ मुतवज्जो है कि आज मीडिया का दौर है, लेकिन ये हकीकत है कि मीडिया एक दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है, तो लिहाजा मीडिया को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि इस वक्त मुख्तलिफ जहात से कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए उसे जो पॉजिटिव अंदाज में काम करना चाहिए उसे कैसे करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर हमारे इस्लामिक चैनल्स हैं साफ ज़रा वो कमर्शियल नहीं हैं,
बिल्कुल
उनकी वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि एक कमर्शियल चैनल की होती है कि उन्होंने पैसे बनाने होते हैं ये वो, तो एक ग्रेटर काज के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि अभी इस वक्त हमारे पास जो दो तीन चैनल्स हैं वो उलमा के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं।
एक सवाल जो आपसे इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी दूसरे अहले सुन्नत बरादरान ने अपने चैनल से कॉल करके हमें कहा, यानी इनफरादी तौर पर उन्होंने कॉल नहीं की, उन्होंने जिक्र किया कि वो नूर टीवी से बात कर रहे हैं, तो हमारे इस तरह अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के चैनलों का आपस में रबता होना, इसको किस कदर आप किस निगाह से देखते हैं?
भाई ये रबता हकीकत यह है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये एक दफ़ा आरमान करना, एक चीज़ को आइडियलाइज करना वो एक और चीज़ है। प्रैक्टिकली ये उसी सूरत में है कि जब चाहे अहले सुन्नत के चैनल्स हों चाहे अहले तशय्यो के हों, जब वो एक कौम मिल्लत और उम्मत के हवाले से जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसका एहसास करेंगे, तफरकाबाजी से जो है वो परहेज़ करेंगे। मैं बिला इस्तिस्ना कह रहा हूँ तो चाहे वो शिया चैनल हों चाहे सुनी,
क्योंकि अभी एक कॉलर मौजूद है माजरत के साथ आपकी बात कट रही है, आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं
जी? आबिद हुसैन बरी से।
जी आबिद हुसैन साहिब, आपका अगर कोई सवाल हो तो फरमाइएगा।
जी मेरा सवाल ये है कि जो चांद शुरू होता है वो अपना न्यूजीलैंड से शुरू होता है, तो अगर न्यूजीलैंड में चांद देख जाए तो क्या पूरी दुनिया में ईद हो सकती है उसी दिन?
ठीक है, हम ये सवाल आपसे मौलाना से आगा अगर इसका जवाब अभी आप दे दें।
हाँ देखें, अभी चांद आकाश के ऐसा ही होता कि चांद न्यूजीलैंड से शुरू होता और चलता रहता। चांद की हालतें मुख्तलिफ हैं और सूरज जो है ना वो जिस तरह से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है ना, एक अपने मदार पे भी घूमती है और फिर एक सूरज जैसे है, ये सूरज भी रुका हुआ नहीं है, कुल्लु अजरिम मुसव्वर। कुरान में आया था ना कि हर चीज़ एक हरकत में है, एक तकामुल की उसमें चल रही है, सैर के अंदर है। सूरज भी घूम रहा है गैलेक्सी के अंदर, कहकशां के अंदर, और ख़ुद ज़मीन उसे गिर्द भी चक्कर लगा रही है जिसे साल बनते हैं, और अपने मदार पे घूम रही है जिसे दिन और रात बनते हैं। चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। اچھا جو چاند گھوم رہا ہے نا اس کی حالتیں مختلف ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ اس دفعہ جو شروع ہوا نیوزی لینڈ سے شروع نہیں ہوا، چاند اس دفعہ ساؤتھ امریکہ سے شروع ہوا، وہ بھی آدھے ساؤتھ امریکہ میں نظر آیا ہے آدھے میں نظر نہیں آیا، ایسے شروع ہوا. چاند کی حالتیں مختلف ہیں، اور چاند بعض اوقات آتا ہے شمال سے شروع ہوتا ہے اور اوپر والے ملکوں کو نظر آتا ہے، جنوب کے سارے ممالک کو نظر نہیں آتا، بعض کا جنوب سے شروع ہوتا ہے شمال میں نظر نہیں آتا. یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہے، آسان نہیں ہے، کاش کتنا سمپل ہوتا. اچھا اب اگر شروع ہوا اگر نیوزی لینڈ سے، مثال کے طور پہ آپ نے جو بھی بات کہی ہے، تو نیوزی لینڈ سے بعض اوقات اپنا جو مدار بناتا ہے وہ شمال کی طرف جا رہا ہے، اگر شمال کی طرف جا رہا ہے تو بعض اوقات ایشیا ممالک میں نظر نہیں آئے گا، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں نظر آ گیا، افریقہ میں نظر آ جائے گا، اور پھر ساؤتھ اور نارتھ امریکہ میں نظر آئے گا، پورا ایشیا اور پورا کا پورا جو ہے یورپ کاٹ جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. اگلے دن جو ہے وہ سارے کے سارے ایشیا میں اور یورپ میں نظر آئے گا. تو چاند کی حالتیں مختلف ہیں، ہر دفعہ میں، ہر مہینے میں مختلف ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب اس کے علماء کا اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں، جیسے آیت اللہ خوئی مرحوم، جیسے امام خمینی وغیرہ، کہ اگر مشرق میں کہیں پہ بھی نظر آ گیا تو وہ سارے نیوزی لینڈ کا چاند سارے کے سارے ویسٹ کے لیے کافی ہے. یہ جنرل ایک فتویٰ ہے، آغا خوئی مرحوم کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ رات شیئر کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کافی ہے، یعنی آپ کے ہاں رات ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں نظر آیا، اب وہ بے شک یورپ میں نظر نہ آئے، تمام کے تمام یورپ کے لیے کافی ہے، یہ سب فقہا کہتے تھے پرانے. اب پاکستان میں اگر نظر آیا ہے تو انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے بھی کافی ہے، کیونکہ ان کی رات مشترک ہے. یہ آغا خوئی کا فتویٰ ہے. تیسرا فتویٰ یہ ہے جو آسانی رحمنائی وغیرہ کا ہے، کہ اگر ہم افق ہیں، وہ اختلاف افاق قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حتیٰ یورپ کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یورپ میں نظر آنے کے قابل نہیں ہوا تو یورپ کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تین نظریے ہیں. بعض ایک اور چوتھا نظریہ جو بہت ہی شاذ ہے کہ برتھ آف مون والا، وہ بہرحال ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن یہ تین نظریات ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہمیں سب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، پھر ہم اعلان کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہرحال یہ کمپلیکیٹڈ ہے، یہ میں نے اس پہ کرے کبھی موقع ملا پورا پروگرام کروں، لیکن آپ نے ہمیں موقع دیا، بہرحال بری سے عابد حسین صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تینوں نظریات کو پیش کر سکیں. تو تین نظریے ہیں، ایک مشرق میں نظر آیا تو تمام مغرب والوں کے لیے کافی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر جس جگہ پہ چاند نظر آیا ہے مغرب والوں کے لیے ہی کافی نہیں ہے، ان کے لیے تو کافی ہے ہی، بلکہ مشرق والوں کے لیے بھی کافی ہے اگر آپ کی نائٹ جو ہے آپ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت نظریات. تیسرا نظریہ جو ہے مین، ہم نظریات کی بات کر رہے ہیں، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مشرق میں نظر آنے والا چاند مغرب کے لیے تب کافی ہے اگر وہ اتحاد افق رکھتے ہوں، یعنی ان کا ہرائزن ایک ہو. تو یہ تین بنیادی نظریات ہیں، اس کے علاوہ ان میں باریکیوں میں اور زیادہ اختلافات ہیں. یہ فقہا کی تحقیقات الگ الگ ہیں سائنس کے حساب سے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب فقہا نے کہہ دیا آبزرویٹری کافی ہے تو وہ آبزرویٹری کو بیس بنا کے، جب اتفاق یعنی ہم اگر دیکھ لیں کہ چاند کی رویت کا امکان ہے، ہم اس بیسس پہ کرتے ہیں. تو یہ
مانیے سلمان بھائی، اس حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو قبلہ سید علی رضوی صاحب کی مجموعی جو گفتگو ہے اس میں دو پوائنٹ ہیں، اس کو ہائی لائٹ مزید کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ مجلس علماء شیعہ یورپ جو اس حوالے سے چاند چونکہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور مجلس علماء جو ہے مختلف مراجع کے جو معیارات ہیں چاند کے حوالے اس کو مد نظر رکھ کر کے کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ ہے کہ کسی پر امپوز نہیں کرتے. جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ہم اس کو اعلان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایشو نہیں بننا چاہیے قوم کے اندر. اگر اس کے باوجود اگر کوئی کسی دوسرے سورس پر مطمئن ہے کوئی آدمی، تو بالکل ہمارا اس پر جو ہے کوئی اتنی ضد نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سنیں. لیکن ہم جو ہے واقعا جس طرح قبلہ نے فرمایا، ہم نے بڑی محنت کی ہے اس حوالے سے، اپنے ڈرائنگ روم سے بھی نکلے ہیں، دوسروں کے پاس چل کر گئے ہیں اس مسئلے کو سلجھانے کی، جو محنت ہم کر سکتے تھے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسری کسی بھی رائے کی ہم احترام کرتے ہیں.
ہمارے ساتھ پروگرام کے لاسٹ کالر موجود ہیں، ان کو شامل کریں گے اور پھر پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا اور سوال.
بھائی میرا نام فخرال اسلام، ساؤتھ یورکشائر سے بات کر رہا ہے.
جی
ساؤتھ یورکشائر.
میرا سوال ہے کہ
فخرال اسلام،
ہم کسی کو انسلٹ کر لیتے نہیں ہے، مگر ہم جاننے کے لیے آپ کو سوال کر رہے ہیں.
جی بالکل فرمائیے.
شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، میرا پہلی سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، اور ابھی اس دنیا میں کتنا مسلمان کا اندر بہت بہت حصہ ہو گیا. کوئی بولتا ہے سنی، کوئی شیعہ، کوئی آل بیت، کوئی بہت جماعت ہو گیا. تو اس کا وجہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
تیسرا سوال ہے میرا،
جی فرمائیے.
میں سنا ہے جو شیعہ لوگ ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتا ہے جس وقت، اس وقت جو نماز کا جو مسلح کے سامنے پتھر ڈالتا ہے،
لیکن
شیعہ قرآن کے اندر جب لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا، اور خود وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ وہ جناب نوح کے شیعوں میں تھے. شیعہ یعنی لفظ شیعہ اس میں جمع ہے، اور اس کے معنی ہیں فالوورز کے، یعنی پیروکار، کسی کی پیروی کرنے والے، کسی کو ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے. جب جنگ صفین کے بعد اور نہروان کے بعد جو ہے، جب ایک تفریق پیدا ہو گئی تھی کہ خود عالم اسلام تقسیم ہو گیا تھا، رسول خدا کے بعد امیر المومنین تک حضرت علی تک جو ہے وہ ایک حکومت اسلامی تھی، اس کے بعد دو بن گئے ملک. سب سے پہلے اسلام میں جو ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان، بہرحال وہ ڈیوائیڈ ہوا اور وہاں پہ حضرت علی کے خلاف ایک جنگ ہوئی. اس کے بعد پھر دو گروہ ہو گئے، کچھ علی کو حضرت علی علیہ السلام کو مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. اس وقت جو حضرت علی علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو کہا گیا شیعان علی. اس کے بعد پھر وہ بہرحال ایک بنیاد پڑ گئی، اور اس کے بعد بہرحال اس سے پہلے بھی رسول خدا نے استعمال کیا کہ علی و شیعتہم الفائزون، بے شک علی اور ان کے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. اس میں ہمارے اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علیہ السلام کو مانتے ہیں.
بالکل.
تو اب یہ لفظ شیعہ کے معنی ہے فالوور کے، ماننے والے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. سیرت رسول خدا کو اگر ہم لیتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام سے. صحابہ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ اگر کبھی صحابہ میں اور اہل بیت میں اختلاف ہو تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے چیز حدیث رسول کو، فرمان رسول کو، شریعت محمدی کو، قرآن کی تفسیر کو، اگر کبھی اختلاف ہو اہل بیت علیہ السلام کی رائے میں، گفتگو میں، کلام میں اور صحابہ میں، تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے، رسول خدا کی فیملی سے، ان کے خاندان سے، ان کی بیٹی، ان کے داماد بھائی اور ان کے نواسوں اور ان سے لیتے ہیں بات، اگر اختلاف ہو جائے تو. ان کی بات کو اولویت، ان کی بات کو پرائیورٹی، ہر چیز پہ پرائیورٹی قرآن کے بعد.
اگر ہمارے پاس ایک منٹ موجود ہے، اگر
جب میں خلاصہ یہ کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ سجدگاہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شیعہ سنی سب کتابوں میں، صحیح بخاری میں، کہ جعلت المسجد ارض و مسجد مطہورا، بے شک کہ زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا گیا ہے اور طہارت کی جگہ. پانی نہ ہو تو تیمم زمین پہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں سجدہ صرف اور صرف زمین پہ ہو سکتا ہے، وجہ الارض پہ، تمام کی تمام زمین، ریت پہ، مٹی پہ، پتھر پہ، لیکن کھانے اور پہننے والے چیزوں پہ، کھانے پینے اور پہننے والے چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. کارپٹ وغیرہ کیونکہ پہنے بھی جاتے ہیں، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس لیے ہمارا سجدہ کارپٹ پہ ہم لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے، اس لیے ہم لوگ پتھر رکھنا درست سمجھتے ہیں. اور سب سے متبرک پتھر جو ہے زمین خاک کربلا امام حسین کے شہادت کے بعد، اس لیے وہاں سے ہم جو ہے وہ سجدگاہ بنا لیتے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں، تو ہم زمین پہ سجدے کو. ایک اور ان کا کچھ سوال تھا
فرقے کے بارے میں.
اچھا، فرقے جتنے بنے ہیں، رسول خدا خود ستفترق امتی الى 73 فرقہ، خود رسول خدا بھی فرمایا میری امت 73 فرقوں میں، یعنی ساری امت ہے، یہ سب رسول خدا کی امت ہیں، لیکن 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں ایک ناجیہ ہوگا جو کام. تو بہرحال سب کا ادعا یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہرحال فرقے اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن یہ سب امت محمدی ہیں، جب تک کہ ختم نبوت کے قائل ہیں، قرآن کو جب تک اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، قبلے کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، رسول خدا کو اپنا نبی مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں، تو ساری وہ امت محمدی ہے. وہ کلمہ گو ہیں، ان کا خون بہانا حرام ہے، ان کے مال کی حرمت ہے کہ اس کو چورا نہیں سکتے، اس کو حلال نہیں سمجھتے.
آغا بہت بہت شکریہ. ٹاپک تو جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم بیٹھے رہیں کافی دیر تک تو یہ بات چلتی رہے گی، لیکن ٹائم جو ہے اس کی اجازت نہیں دے رہا. آغا معروفی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی. آغا علی رضا رضوی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. مولانا نیاز نقوی، آپ کا شکریہ کہ آپ نیو پورٹ سے تشریف لائے ہمارے لیے. اور آغا عظمت عباس صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹائم کی وجہ سے جو سوالات کچھ رہ گئے تھے ان کا جواب نہیں مل سکا. تمام کالرز حضرات کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے کال کی، چاند کے بارے میں معلوم کیا، اور آخری کالر جنہوں نے، امید ہے کہ آپ کو یہ جواب جو ہیں سارے وہ ان سے آپ استفادہ کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہم آئندہ بھی اس موضوع پر اور اس کے حوالے سے اور بھی جو کافی موضوع جو ہم کور سوچ سکتے ہیں کہ وہ کور کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ جاری رکھیں گے. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا، اور ان تمام کالرز کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے، اہل سنت برادران کا شکریہ کہ جنہوں نے کال کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور تب تک کے لیے نیکسٹ پروگرام کے आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।